VZS अध्याय एक। एक बार फिर वाल्पुर्गिसनाक ऐसी शामें होती हैं। आदरणीय पाठक, जो जैसा कि कहा जाता है कैलेंडर में दर्ज होती है, सजी धजी क्रमांकित साफ सुथरी दर्ज, और ऐसी शामें भी होती हैं जो यद्यपि वे स्वाभाविक रूप से दिनांकित भी की जा सकती, फिर भी व्यवस्था का विरोध करती है, क्योंकि वे एक ऐसी सीमा पर स्थित है जहां समय स्वयं यह अत्यंत बुर्जुआ अत्यंत संविदात्मक सिद्धांत एक बार संक्षेप में अपना संयम खो देता है। इन सीमा शामों में फाशिंग शामिल है, शाल्ताबेन शामिल है, और शामिल है हमारी वर्तमान में सिल्वेस्टर की रात यह विचित्र नागरिक और बाल उत्सव, जो अपने आप को शैंपेन से मुखौटा पहनाता है और आतिशबाजी से सुसज्जित करता है ताकि एक से दूसरे में संक्रमण वैसा न दिखे जैसा वह वास्तव में है। एक शांत अगोचर कदम। हैंस कैस्टॉर्प यह जानता था, बिना जाने वह अवधारणाओं का नहीं बल्कि संवेदनाओं का आदमी था, और फिर भी जब से उसने एक ऐसे तरीके से, जिसका हम यहाँ आगे वर्णन नहीं करना चाहते क्योंकि कथा पर यह संदेह नहीं आना चाहिए कि वह निर्देश देने का इरादा रखती है, युद्ध से अपने को अलग कर लिया था और अपने को एक ऐसे जीवन में बचा ले गया था जिसे यदि कोई कठोर हो तो विलासी और यदि कोई उदार हो तो केवल सुसंगत कहा जा सकता है, उसने हर उस चीज के साथ एक विशेष संबंध विकसित कर लिया था जो व्यवस्थाओं के बीच स्थित है, क्योंकि भगोड़ा भले ही वह होटलों में सोता हो और निर्दोष वेतरों द्वारा सेवा प्राप्त करता हो, भीतर से हमेशा अंतरालों का आदमी बना रहता है, नाम और उपनाम के बीच, अपराध बोध और आत्मरक्षा के बीच, दृश्यता और मुखौटे के बीच। और अब वह फिर से ऊपर था, आराम के उच्च भूमि पर, जहां खंड को सहा नहीं जाता बल्कि क्यूरेट किया जाता है, जहां बर्फ मौसम नहीं बल्कि सजावट है, और जहां नश्वर को दीर्घायु वायदे की सदस्यता बेची जाती है मानो वह कोई फिटनेस प्रोग्राम हो। घर उसका एक नाम था जो सूरज जैसा लगता था, और फिर भी पर्याप्त अप्रसन्नता पूर्वक बर्फ में एक बचाव उपकरण पड़ा था, एक नारंगी रंग की रिंग जिस पर काले अक्षरों में नाम लिखा था, मानो पर्वत स्वयं यह याद दिलाना चाहता हो कि ऊंचाई के मौसम में हर आनंद को एक बचाव तंत्र की जरूरत होती है। यह रिंग आधी सफेद में आधी गहरे फर्श पर पड़ी थी। एक मूर्खता, एक विज्ञापन, एक प्रतीक, आधुनिकता ऐसी ही है। बाहर काले चमकदार पत्थरों के आंगन पर पत्थर की दीवार और ठिठुरे हुए झाड़ झंखाड़ के बीच गोल मेजें खड़ी थी, सफेद कपड़ों से ढकी मानो वे वेदियां हों, और वे थीम ही बस यह कि अब पूजा संतों के लिए नहीं बल्कि शर्करों वसाओं सुगंध पदार्थों और उस मीठे वादे के लिए थी कि आज एक बार सब कुछ करने की अनुमति है। चपटी लकड़ी की पेटियों में छोटी छोटी चॉकलेट की गोलियां पड़ी थी, हल्की और गहरी कतारों में, मानो यहां कोई ऐसी व्यवस्था लालसा काम कर रही हो जो आनंद को भी अव्यवस्थित होने की अनुमति नहीं देती। बगल में सैंडविच कुकीज, अंगूठी आकार के बिस्कुट, पेस्टल रंगों में झागदार टुकड़े जो ऐसे दिखते थे मानो किसी ने बादलों को हिस्सों में बांट दिया हो, और एक गिलास में लकड़ी की डंडियां लगी थीं, तैयार मार्शमेलो में घुसने के लिए या उन गर्म पेयों में जिन्हें एक ऐसे शब्द से नवाजा जाता है जो थोड़ा बचपन जैसा लगता है और थोड़ा सांत्वना जैसा। काकाओ, बच्चे क्योंकि बच्चे थे वहां, और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी संस्थाओं में बच्चे ही असली सत्यदूत होते हैं, वे वैभव को शिष्टाचार पर नहीं बल्कि खाद्य योग्यता पर परखते हैं। मेजों के किनारों पर खड़े थे और उस लालची निष्कपटता से जो वयस्कों को भावुक भी करती है और साथ ही बेनकाब भी, सफेद गुलाबी और हरे झागदार घनों को देखते थे मानो वे रत्न हों। वयस्क बगल में खड़े थे और ऐसा दिखावा कर रहे थे मानो उनकी ध्यानदेही बातचीत पर हो, जबकि उनके हाथ पहले ही नैपकिनों की ओर टटोल रहे थे। इस सब पर एक रोशनी पड़ी थी, ठंडी और दयालु शीतकालीन सूर्य, और फिर मानो किसी ने प्रकृति को किसी वास्तुकार की सनक से बदल दिया हो। वहां ये पारदर्शी गुंबद खड़े थे, प्लास्टिक और डंडों के ढांचे से बने भू आकृतिक बुलबुले, जिनमें लोग ऐसे बैठे थे जैसे किसी प्रदर्शनी में, उन्हें दूधिया लहरेदार त्वचा के पार देखा जा सकता था, थोड़ा विकृत थोड़ा दूर दूर। और हांस कैस्टॉर्प, जिसने बर्गोफ समय को जाना था, अनायास ही उन लेखने हॉलों के बारे में सोचने लगा जिन्होंने कभी वायु चिकित्साओं का शासन चलाया था। बस अब कोई लेटता नहीं है उपचार के लिए बल्कि बैठता है विशेषाधिकार के लिए, निजता एक वेलनेस सेवा के रूप में। ये है, यदि ऐसा कहें, आधुनिक लेटने की कुर्थी, कंबलों और थर्मामीटरों के साथ बल्कि प्लेक्सीग्लास गुंबदों और भेड़ की खालों के साथ। ऐसे ही एक गुंबद में एक सफेद खाल पड़ी थी जैसे ताजा गिरी बर्फ, उस पर एक छोटी मेज खड़ी थी काली और पतली टांगों वाली, और उस पर गिलास, एक वाइन ग्लास, पानी के गिलास, एक विंड लाइट जिसमें एक लौ टिमटिमा रही थी। इस सारी सुव्यवस्थित ठंड के बीच एक बहुत छोटी बहुत बहादुर लौ, और प्रवेश द्वार पर मानो वह इस कांच के मध्य लोक का रक्षक हो, एक छोटा भूरा घुंघराले बालों वाला कुत्ता बैठा था। एक छोटे से कोट में सजा धजा जैसे कोई रोगी। यहाँ आदरणीय पाठक कोई उस पूडल के बारे में सोच सकता है जिसने कभी किसी अन्य महान जर्मन कृति में हर्ण डॉक्टर को बहकाया था। कोई यदि स्वयं को मनोरंजन करने के लिए प्रवृत्त हो, इस छोटे से प्राणी में वर्तमान के शैतान को पहचान सकता है। अब न काला न गंधक युक्त, बल्कि टेढ़ी सा थेरेपी योग्य और फिर भी एक दहलीज का प्रहरी। गुंबदों के बगल में एक गाड़ी खड़ी थी, काली और सुनहरी, जिसमें एक कांच का कंटेनर था जिसमें पॉपकॉर्न पड़ा था। पॉपकॉर्न, यह पतली दीवार वाला विस्फोटक रूप से फैला हुआ दाना जो इतना निष्कपट खड़खड़ाता है और फिर भी मूलतः भाई का खेलिया भाई भर है। क्योंकि यहाँ भी और यही वह विडंबना है जिसे हांस कैस्टर्प नाम नहीं दे सका पर महसूस किया, विस्फोट का सिद्धांत शासन कर रहा था। दाने में, कॉर्क में, आकाश में। गाड़ी की एक छत थी और उसके नीचे गहरे कपड़ों में लोग काम कर रहे थे। वे सफेद फूले हुए दाने को निकालते और बांटते थे मानो खाने के लिए बर्फ बांटी जा रही हो। हांस कैस्टर्प ने उसे सूंघा और गंध गर्म थी, इस ठंड में गर्म, स्मृति जैसी गर्म। वे चला, हाथ जेबों में, कॉलर ऊपर उठा हुआ, नहीं क्योंकि उसे ठंड लग रही थी बल्कि क्योंकि कॉलर एक प्रतिरोध भंगिमा है जो आधुनिक मनुष्य के लिए उतनी ही स्वाभाविक हो गई है जितनी पुराने के लिए टोपी। वह पानी की ओर चला क्योंकि वहां थोड़ा आगे एक ताल था, नीला, शांत। आकाश के नीचे अवास्तविक रूप से नीला, जो स्वयं इतना नीला था मानो किसी ने सैचुरेशन बढ़ा दी हो, और इस पानी पर गोलक तैर रहे थे, बड़े चमकदार बुलबुले जो इंद्रधनुषी रंगों में चमकते थे और रोशनी को पेस्टल में विभाजित करते थे। वे वहां ऐसे पड़े थे जैसे अतिविशाल साबुन बुलबुले, जैसे ग्रह, जैसे गुब्बारे, जैसे फेफड़ों के बुलबुले। और शायद यही अंतिम संबद्धता सबसे वास्तविक थी, क्योंकि उच्च भूमि, कुरस्थान, सांस कमी और सांस वायदे की दुनिया हमेशा से बुलबुलों की दुनिया रही है। फेफड़ों में बुलबुले, शैंपेन में बुलबुले, स्नान दुनिया में बुलबुले। गोलकों ने पानी पर छायाएं डाली, लंबी गहरी छायाएं मानो उनका वजन हो। और हांस कैस्टर्प ने सोचा कि जो कुछ भी चमकता है उसकी छाया होती है, एक विचार जो साधारण है और इसलिए सही। किनारे पर लोग खड़े थे कोटों और टोपियों में और इन बुलबुलों को देख रहे थे, और वह नहीं कह सकता था कि वे मनोरंजन कर रहे थे या श्रद्धालु थे, क्योंकि आधुनिकता ने श्रद्धा का एक नया रूप ईजाद किया है, प्रभाव के प्रति श्रद्धा। उसके पीछे ऊपर की ओर टेरेस पर आइस बार बनाई गई थी, बर्फ से एक काउंटर बनाया गया था, चिकना और पारदर्शी, और इस बर्फ में शब्द काटे गए थे जो क्योंकि वे बर्फ में ही खड़े थे अचानक कुछ अंतिम अपरिवर्तनीय जैसे लग रहे थे, यद्यपि वे तो अगली धूप में, अगली हवा में, अगली घड़ी में पानी बन जाने वाले थे। सिल्वेस्टर 2025-2026। उसके नीचे एक हंसता हुआ सूरज चिन्ह, मैत्रीपूर्ण गोल ब्रांड जैसा। यह ऐसा था आदरणीय पाठक, मानो किसी ने स्वयं कैलेंडर को एक ऐसे पदार्थ में ढाल दिया हो जो नश्वरता को प्रदर्शित करता है, हमारी समय प्रतीकवाद से इतना प्रेम करती है कि वे उसे साथ ही दे देती है, बस उसे पढ़ना होता है, जैसे आज सब कुछ पढ़ा जाता है। बर्फ पर गिलास रखे थे, पतले ऊंचे, और बगल में शैंपेन की बोतलें कूलर में पड़ी थीं, और एक गहरे कोट में एक स्त्री उनसे इस तरह काम ले रही थी मानो यह औजार हो। पीछे पुरुष भी गहरे कोटों में थे और सिरों को इस तरह पास पास किए खड़े थे जैसे पुरुष सिर पास पास करते हैं जब वे या तो सौदे करते हैं या एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। हांस कैस्टर्प ने एक गिलास लिया, लालची नहीं बल्कि जांचते हुए, और महसूस किया कि गिलास की ठंडक उसकी उंगलियों में खिंच रही है। उसने पिया और बुलबुले उसके सिर में एक हल्की सुरुचिपूर्ण अधीरता की तरह चढ़ गए। वह मुस्कुराया क्योंकि वह जानता था कि वह मुस्कुरा रहा है और यह हमेशा दूरी का संकेत होता है, क्योंकि वह तो वास्तव में वहां नहीं था। वह वहां एक नाम के साथ था जो उसका नाम नहीं था। वह वहां एक अतीत के साथ था जिसे वह उच्चारित नहीं कर सकता था। वह वहां विलास अतिथि और शरणार्थी दोनों के रूप में था, और ठीक इसी कारण इस रात, इस वर्ष अंतराल रात, इस आधुनिक कार्निवालिस्क रात में इसके लिए कुछ लुभावना था। यह एक मुखौटा उत्सव था जो उसकी ओर बढ़कर आता था। अंदर गर्म रोशनी में एक फोटो कबीन बनाई गई थी, आत्म प्रदर्शन का एक छोटा थिएटर जो अब फोटोग्राफी नहीं कहलाता बल्कि पर्याप्त अप्रसन्नता पूर्वक फोटोबॉक्स। वहां एक पृष्ठभूमि लटकी थी चमकदार फॉयल से बनी, नीली और इंद्रधनुषी जैसे जमी हुई पानी, और उसके सामने लोग शाम के वस्त्रों में भीड़ लगाए थे लेकिन ऐसे सहायक सामानों के साथ जो पूरे को हास्यास्पद बना देते थे और इस तरह उसे संभव भी। तब हांस कैस्टर्प ने देखा कि एक स्त्री पतली खुले गले वाली एक ऐसे वस्त्र में जो कंधे पर चमक रहा था एक चश्मा पहने थी जिसके शीशे दिल के आकार के थे। और उसने सोचा, हमारी समय कितनी कोशिश करती है भावना को एक चिन्ह में बदलने की ताकि वह प्रदर्शनीय हो जाए। बगल में एक पुरुष स्मोकिंग में लेकिन एक
जंगली हल्की विग के साथ, मानो वह कहना चाहता हो, मैं सजा धजा भी हूँ और बंधा हुआ भी नहीं। आगे बच्चे गुड़ियों की तरह सजे धजे लेकिन मुकुटों और पिक्सल चश्मों के साथ, जो उन्हें एक झूठी कूलनेस देते थे जबकि उनके मुंह हंसी से खुले थे। अगले चित्र में फिर वही स्मोकिंग लेकिन उसके ऊपर एक गदरे का सिर, एक मुखौटा बड़े कानों और पीली मुस्कान के साथ, और मुखौटाधारी का हाथ उठा हुआ मानो वह दर्शकों का अभिवादन कर रहा हो। यह हास्यजनक था, यह भावुक कर देने वाला था, और यह यदि कोई कठोर हो दुनिया की एक तस्वीर थी। मनुष्य अपनी औपचारिक पोशाक में, जो स्वयं को पशु बना लेता है ताकि एक क्षण के लिए मनुष्य न होना पड़े। हैंस कास्टोर्प कुछ क्षण इन लोगों के पीछे खड़ा रहा और उन्हें उस कोमल हल्की उदासीन विडंबना से देखता रहा जो दर्शक की होती है। फिर बिना ठीक ठीक जाने क्यों वह पास आया, नहीं क्योंकि वह फोटोग्राफ किया जाना चाहता था, वह पकड़ा नहीं जाना चाहता था, विशेषकर ऐसी दुनिया में नहीं जहां हर पकड़े जाना साथ ही प्रसारित होना भी है। लेकिन वह मुखौटे की धारणा से आकर्षित महसूस कर रहा था। विल्सदु, किसी ने पूछा, शायद एक लड़की, एक आवाज, युवा, तेज, और एक हाथ ने उसे चश्मों में से एक बढ़ाया, दूसरे ने एक सुनहरा प्लास्टिक मुकुट। हैंस कास्टोर्प ने मुकुट नहीं लिया, उसने इसके बजाय एक साधारण काला मुखौटा लिया जो किनारे पर पड़ा था, दिलों और गधों के बीच अनाकर्षक कपड़े का एक टुकड़ा जो चेहरे का आधा हिस्सा ढकता था, और इस तरह अचानक बहुत गंभीर लगने लगा। उसने उसे थोड़ी देर हाथ में पकड़े रखा। कपड़ा, रबर, नए पदार्थ की गंध, निर्माण की गंध, तुम पुराने ढंग के हो, उसके बगल में एक आवाज ने कहा। वह मुड़ा, वह वहां खड़ी थी, थोड़ा अलग, और उसने कुछ भी चटक नहीं पहना था, न विग न कान, लेकिन उसकी आंखों में वह भाव था जो एक साथ थका हुआ और व्यंग्यपूर्ण होता है, और उसका मुंह पतला, थोड़ा ऊपर की ओर खिंचा हुआ, एक ऐसी दुष्टता की तत्परता प्रकट कर रहा था जिसे हैंस कास्टोर्प ने हमेशा से अनुग्रह के रूप में अनुभव किया था। पुराने ढंग का, उसने दोहराया। वुई, उसने कहा, और यह वुई पाठ्यपुस्तक फ्रांसीसी नहीं बल्कि एक भंगिमा के रूप में फ्रांसीसी था, जर्मन व्यवस्था से एक हल्का बाहर निकालना। तुम अब भी यह मानना चाहते हो कि एक मुखौटा कपड़ा होना चाहिए जबकि आज सब कुछ मुखौटा है। वह नहीं जानता था कि वह उसे जानता है या नहीं, वह केवल यह जानता था कि वह उसे जानता था, क्योंकि आदरणीय पाठक, हम केवल व्यक्तियों को नहीं जानते, हम भंगिमाओं को जानते हैं, हम लयों को जानते हैं, हम उस तरह को जानते हैं जिसमें कोई वाक्य रखा जाता है मानो वह आधा व्यंग्य हो आधा चुंबन। उसने उसकी हाथ में पकड़ी काली मुखौटा पर नजर डाली। तुम बहुत कुरेक्ट हो, उसने कहा, और उसके मुंह में कुरेक्ट शब्द में कुछ ऐसा था जो एक छोटी गुप्त हंसी जैसा था। अनप्यू बुर्जुआ, हैंस कास्टोर्प ने महसूस किया कि उसे गर्मी लग रही है, शैंपेन से नहीं बल्कि इस पुराने पर्याप्त अप्रसन्नतापूर्वक युवा भाव से कि कोई उसे ऐसी जगह छूता है जो दिखाई नहीं देती। व्यवस्था, उसने धीरे से कहा, शायद केवल एक डर है जो सजा धजा हुआ है। आह, उसने कहा, अब तुम दार्शनिक हो रहे हो, सावधान रहो, यह खतरनाक है। खतरनाक, उसने दोहराया और विचार को नहीं कहा। वे बाहर चले गए क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा हंसी थी। बाहर खंड में हंसी दब गई थी और उसकी जगह जूतों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। ठिठुरे फर्श पर गिलासों की हल्की खनखनाहट, उस यंत्र का दूर का गुनगुनाना
जो कहीं गर्मी पैदा कर रहा था मानो गर्मी कोई सेवा हो।
मिठाइयों वाली मेजों में से एक पर वह रुकी और गिलास से एक लकड़ी की डंडी निकाली, एक साधारण हल्की डंडी जैसी मूलतः हर कोई जानता है, और फिर भी उसकी हाथ में वह अचानक एक अर्थयुक्त वस्तु बन गई क्योंकि वह उसे पकड़े हुए थी। उसने उससे एक मार्शमेलो में छेद किया उस पेस्टल रंग के झाग में और उसे ऊपर उठाया मानो वह आकाश का एक छोटा टुकड़ा प्रस्तुत कर रही हो।
तुम चाहोगे, उसने पूछा। हैंस कास्टोर्प ने सिर हिलाया। उसे शक्कर की भूख नहीं थी, उसे किसी और चीज की भूख थी। उसने उसे देखा। क्या तुम्हारे पास कोई कलम है, उसने पूछा, और उसने स्वयं को एक विस्मय के साथ बोलते सुना मानो वह नहीं बल्कि कोई और बोल रहा हो जो कभी वह रहा हो। वह हल्के से हंसी। एक कलम, उसने कहा। तुम्हें कलम किस लिए चाहिए मॉन्शे, तुम्हारे पास तो हर जगह कलमें हैं, तुम्हारे उपकरणों में, तुम्हारी घड़ियों में, तुम्हारी ऐप्स में। उसने उत्तर नहीं दिया, उसने केवल लगभग बाल सुलभ ढंग से उस छोटी स्टेशन की ओर इशारा किया जो फोटोबॉक्स थिएटर के बगल में बनाई गई थी। वहां एक आदमी बैठा था या एक आकृति, ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता था।
पूरा काले में और उसका सिर एक साफ कोनीय शीशे के पीछे फंसा था, मानो उसने कांच का हेलमेट पहन रखा हो। उसके सामने एक सफेद पन्ना पड़ा था और एक ब्रश या कलम से वह उस पर भूरे रेखाएं खींच रहा था, हिचकिचाते कलात्मक ढंग से, मानो वह अक्षर नहीं बल्कि भाग्य लिख रहा हो। एक बच्चा बगल में खड़ा था और कुछ ऊपर उठाए हुए था, शायद एक चित्र, शायद एक फ्रेम, और देख रहा था उस श्रद्धा के साथ जो बच्चे
कभी कभी हस्तकला के प्रति दिखाते हैं। वह नाम लिखता है, हैंस कैस्टॉप ने कहा। नाम, उसने भौहे उठाई, तुम्हारा मतलब पहचानो। उसे एक छोटा सा चुभन महसूस हुई। हाँ, पहचानो, मैं चाहता हूं, उसने कहा, कि वह मेरा नाम लिखे। कौन सा, उसने पूछा। हैंस कैस्टॉप चुप रहा, और इस चुप्पी में सब कुछ था, युद्ध, अलगाव, बचाव, शर्म, विलास, झूठ, थकान। उसने उसे लंबे समय तक देखा, फिर उसने उसे लकड़ी की डंडी थमा दी। मार्शमैलो नहीं, केवल डंडी, खाली, हल्की, हास्यास्पद। वोला, उसने कहा, लो इससे लिखो। इससे लिखा नहीं जा सकता, हो सकता है, उसने कहा, सब कुछ से लिखा जा सकता है यदि कोई तैयार हो कि वह धुंधला पड़ जाए। और यह, आदरणीय पाठक, एक ऐसी सच्चाई थी, इतनी सरल कि वह खतरनाक थी। वे आइस बार पर वापस गए क्योंकि घड़ी नजदीक आ रही थी। लोग गिनना, हंसना, पुकारना शुरू कर चुके थे। किसी ने छोटे कागजी नलिकाएं बांटी जो कन्फेटी उगलती हैं, और हैंस कैस्टॉप ने सोचा, यह आधुनिक दुनिया क्षण को कितनी यांत्रिक बना चुकी है। संक्रमण की घोषणा होनी चाहिए, उसे उल्टी गिनती के साथ होना चाहिए, उसे दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि अन्यथा उस पर भरोसा नहीं किया जाता। गिलास खनखनाए, बर्फ चमकी, बर्फ में शब्द, सिल्वेस्टर 2025-2026। वहां किसी फैसले की तरह खड़े थे, और फिर भी किनारों पर पहले से ही छोटे छोटे कतरे बह रहे थे, मानो कैलेंडर रो रहा हो। फिर यह हुआ, आकाश जो अभी तक काला था, अचानक रोशनी से चीर दिया गया, सफेद और लाल रेखाओं से, चमकते तारों से जो फैलते और मिट जाते थे, और धुआं एक दूसर पर्दे की तरह दृश्य पर खिंच आया। यह सुंदर था, यह शोरगुल वाला था, यदि ईमानदार हूं, पर्याप्त अप्रसन्नतापूर्वक था, क्योंकि आतिशबाजी युद्ध के साथ खेल है, और युद्ध खेल के बिना आतिशबाजी है। हैंस कैस्टॉप अनायास ही सिमट गया, पूरी तरह अनैच्छिक, पूरी तरह शारीरिक। शरीर कुछ ध्वनियों को पहचान लेता है इससे पहले कि मन उन्हें अर्थ दे। उसने अपना हृदय महसूस किया, कैसे उसने एक धड़कन छोड़ दी और फिर दो पूरी की, मानो यह साबित करना चाहता हो कि वह अब भी है। उसने फेफड़ों में ठंडक महसूस की, यद्यपि उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसने महसूस किया कि शैंपेन के बुलबुले अब उसे कम हल्के, कम सुरुचिपूर्ण लग रहे थे, मानो वे अचानक आकाश के बुलबुलों के रिश्तेदार हों। उसने केवल एक क्षण के लिए उसका हाथ उसकी बाह पर रख दिया। सेफिनी, उसने धीरे से कहा, यह खत्म हो गया, यहां यह केवल फेथ है, सिर्फ उत्सव, सिर्फ। उसने उसे देखा और उसके चेहरे में एक भाव था जो एक साथ व्यंग्यपूर्ण और कोमल था, मानो वह जानती हो कि कोई सिर्फ नहीं होता। वे बिना आपस में कुछ कहे गुंबद की ओर गए, उस कांच की बुलबुले की ओर जिसमें सफेद खाल पड़ी थी और छोटी लौ टिमटिमा रही थी। कुत्ता अब भी प्रवेश द्वार पर बैठा था एक प्रहरी की तरह, और उन्हें गंभीर और धैर्यपूर्वक देख रहा था। वे अंदर गए और बाहर की दुनिया, धुएं वाला आकाश, गिलासों वाले लोग, पानी पर गोलक, गुंबद की त्वचा के पार मंद और विकृत हो गई, मानो सब कुछ किसी स्मृति के माध्यम से देखा जा रहा हो। अंदर ज्यादा शांति थी, मेज पर गिलास रखे थे, एक आधा खाली, एक पूरी तरह खाली, और विंडलाइट ने खाल पर छायाएं डाली, सांस जैसी मुलायम। हैंस कैस्टॉप बैठ गया और वह उसके सामने बैठ गई, लेकिन सचमुच सामने नहीं, वह ऐसे बैठी कि दूरी अब बुर्जुआ नहीं रही। तुम बूढ़े हो रहे हो, उसने कहा। मैं ठहरता हूं, उसने उत्तर दिया। तुम हमेशा ठहरते हो, उसने कहा, यही तुम्हारी प्रतिभा है, तुम ठहरते हो जबकि बाकी सब चला जाता है। उसने बर्फ में शब्दों के बारे में सोचा, कतरों के बारे में, पिघलने के बारे में। उसने पानी में बुलबुलों के बारे में सोचा, उनके चमकदार पतले प्रकाश के बारे में। उसने बर्फ में पड़े नारंगी बचाव रिंग के बारे में सोचा, जिस पर सूरज शब्द लिखा था, मानो स्वयं सूरज में भी बचाया जाना पड़े। क्या तुम्हें डर लगता है, उसने पूछा। वह मुस्कुराया, वह कहना चाहता था नहीं, वह कहना चाहता था हाँ, उसने इसके बजाय कहा, मुझे भूख लगी है। और ये, आदरणीय पाठक, झूठ नहीं था। सुबह, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमेशा एक सुबह होती है, सबसे उच्छृंखल मुखौटा उत्सव के बाद भी, और सुबह ही असली नैतिकता है। हैंस कैस्टॉप भोजन कक्ष में बैठा था, जो अब भोजन कक्ष नहीं कहलाता था, बल्कि कोई ऐसा नाम रखता था जो अंतर्राष्ट्रीय आराम जैसा लगता था। उसके सामने एक प्लेट थी, सफेद, बड़ी, और उस पर विलास नाश्ते की रंगीन शारीरिक रचना, सैल्मन, नारंगी और रेशमी,
हैम का एक टुकड़ा, फीका और कुरेक्ट, एक तला हुआ अंडा जिसका पीला भाग एक छोटी सूरज की तरह चमक रहा था, लाल अचार में डूबे टुकड़े जो प्याज जैसे स्वाद वाले थे और खून जैसे दिखते थे, गहरे चुकंदर के टुकड़े जो इतने गहरे बैंगनी थे कि लगभग काले लगते थे, साथ में नारंगी रंग के छोटे छोटे दाने का एक ढेर, कैवियार जैसा, मानो समुद्र से उसके अंडे खरीद लिए गए हों, खीरे के टुकड़े, टमाटर थोड़ा हरा और एक टुकड़ा गहरा रोटी, भारी ईमानदार, एक मक्खन के धब्बे के साथ जो उस पर ऐसे चिपका था जैसे कोई अलीबी। वह धीरे धीरे खा रहा था, नहीं क्योंकि वह तृप्त था, बल्कि क्योंकि धीमा खाना नियंत्रण का अंतिम रूप है जब रात उसे छीन लेती है। और जब वह खा रहा था उसने सोचा, तो यह दूसरी वालपुर्गिस रात, यह अब बरघोफ में नहीं है, अब दरवाजों पर चौकसों वाले भोजन कक्ष में नहीं, ये वेलनेस रिसोर्ट में है, ठिठुरे फर्श पर, पॉपकॉर्न और प्लेक्सीग्लास के बीच, फोटो बॉक्स और आइस बार के बीच, पानी में बुलबुलों और वाइन में बुलबुलों के बीच, बर्फ में तारीख और आकाश में धुएं के बीच। उसने सोचा, कोई युद्ध से भगोड़ा हो सकता है, कोई किसी जीवन से भगोड़ा हो सकता है, लेकिन कोई समय से भगोड़ा नहीं होता, कोई उसे केवल, यदि भाग्यशाली हो, एक शाम के लिए इस बात के लिए राजी कर सकता है कि वह ऐसा दिखावा करे मानो वह मौजूद न हो। उसने रोटी के टुकड़े को थोड़ा किनारे खिसकाया, पीले भाग को देखा, ये छोटी सूरत सफेद बर, और मुस्कुराया, मुस्कान शिष्ट थी पर थोड़ी पर्याप्त अप्रसन्नता पूर्वक।